सुंदर भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आज के इस 12 जून के संध्या जागृति में, पुरुषोत्तम मास में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन में ऐसे सुंदर महीने जब आते हैं तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा महत्व जो है वो पता चलता है कि कितने आसानी से भगवान ने हमें उनके पास बुलाने के लिए कितनी व्यवस्था करके रखी है। बहुत जल्दी बहुत आसानी से हम आलसी होने पर भी कैसे जल्दी से जल्द उनके पास पहुंच सकते हैं, इसलिए भगवान बहुत सारी व्यवस्था करके करते हैं। उसमें से एक व्यवस्था है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। तो अभी केवल कितने दिन बाकी है? हाँ, एक दिन, आज का और कल का दिन। कुछ लोग बोल रहे हैं परसों भी है। अच्छा है, तो इस महीने में भगवान के विषय में संग करना बहुत आवश्यक है। और भगवान के विषय में संग को सत्संग कहते हैं। सत्संग में आना इस महीने में, अगर आप कहीं जा भी नहीं पाए तीर्थ स्थान में या नदी में स्नान करने के लिए या और कई ऐसे व्रत जैसे अच्छी चीज़ें नहीं कर पाए, फिर भी अगर सत्संग में आप जहाँ पर भी हैं वहाँ बैठे हैं तो आपका सारे नदियों में स्नान हो गया है, सारे धामों का दर्शन आपका हो गया है और हर प्रकार का व्रत जो है वो पूर्ण हो सकता है अगर आप सत्संग में आते हैं। और सत्संग में आने के पश्चात में आपको व्रत भी पूर्ण करना है इस महीने का। तो आज हम आपको श्रीमद् भागवतम की प्रह्लाद महाराज की कथा सुनाते हैं। ये कथा जो है प्रह्लाद महाराज की, ये इतनी सुंदर कथा है कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर किसी को भक्ति सीखना है तो प्रह्लाद से सीखना चाहिए, भक्ति कैसे करनी है। और एक महात्म्य है इस कथा का, वो ये है कि जब कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर अवतार लेते हैं तो वो जगन्नाथपुरी में अपने जीवन के आखिरी 24 साल बिताते हैं, सॉरी 24 साल नहीं 18 साल बिताते हैं। उसको कहते हैं अंध लीला। उनका जीवन 48 साल का था लीला का, 24 साल वो नवद्वीप में रहे विवाहित अवस्था में, 24 से 30 उम्र तक वो दक्षिण भारत की सफर में यात्रा में रहे और 31 से 48 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे। और अभी बहुत जल्दी जगन्नाथपुरी का उत्सव का मौसम शुरू होने वाला है, 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा होगी, 14 जुलाई को रथ यात्रा होगी। तो उस अपने 18 साल के जगन्नाथपुरी के निवास के समय श्री चैतन्य महाप्रभु रोज दोपहर में गदाधर पंडित के पास पहुंचते थे। गदाधर पंडित उस समय यमेश्वर टोटा यानी यमराज का शिवजी का मंदिर है, यमराज जी जिस शिवजी की पूजा करते थे उसका नाम है यमेश्वर महादेव। और यमेश्वर महादेव यमेश्वर तोता यानी यमेश्वर के बगीचे में है, बहुत बड़ा बगीचा, उसको उड़िया में तोता कहते हैं, टोटा। तो वो बगीचे में श्री गोपीनाथ जी का विग्रह है, उसको कहते हैं टोटा गोपीनाथ। और ये टोटा गोपीनाथ का विग्रह जो है वो सृष्टि के निर्माण काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया था, वो गोपीनाथ जी है, प्राचीन, सबसे प्राचीन। ये गोपीनाथ जी जो हैं ये बैठे हुए अवस्था में, आप लोगों ने इसका कथा सुना है, कितने लोगों ने सुना है टोटा गोपीनाथ क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि सब भगवान खड़े होते हैं, है ना? कौन से मंदिर में गए आप, देखे भगवान बैठे हुए हैं? हम भी खड़े होकर दर्शन करते हैं, वो भी खड़े रहते हैं। राधा रानी खड़ी है ऐसे, कृष्ण भगवान खड़े ऐसे, जगन्नाथ जी ऐसे खड़े, गौर निता ऐसे खड़े, अलग अलग मुद्रा है, लेकिन सब भगवान खड़े हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक ही जगह गोपीनाथ जी कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। इसका कारण यह है कि गदाधर पंडित ये जो थे, ये राधा रानी के अवतार हैं। राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में गदाधर पंडित बनकर आए, और गदाधर पंडित ये गोपीनाथ जी की पूजा करते थे, उनका मंदिर, उस मंदिर में वो सेवा करते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु के विरह में ये बहुत जल्दी बुढ़े हो गए। आप देखते हैं कभी कभी कोई जवान औरत विधवा हो जाती है, तो बहुत कम समय में बाल सफेद होते हैं, बहुत बीमारी लग जाती है, बहुत बुढ़े जैसे पैकेज शुरू होता है, हेडेक शुरू होता है, बहुत सारे रोग रोग शुरू होते हैं। तो कहते हैं कि जब आदमी दुखी होता है ना, तो वो जल्दी बुढ़ा हो जाता है। वो दुख जो होता है, उस दुख की वजह से उसके शरीर में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आ जाते हैं, और जरा जो है ना बुढ़ापा, वो जल्दी जल्दी आ जाती है। तो ये बहुत सुंदर थे, जब तक चैतन्य महाप्रभु थे तो लोग चैतन्य महाप्रभु उनको मिलते थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए उनके 48 साल की उम्र में, उसके बाद भी वे जीवित रहे, लेकिन बहुत जल्द बुढ़े हो गए। इतने बुढ़े हो गए कि उनको खड़ा होकर भगवान को मूर्ति को माला पहनाना भी मुश्किल हो गया। आप लोग आगे आके बैठो, पीछे के लोग इधर बैठो। जो पीछे देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं, आगे आ जाइए। तो जैसे वो बुढ़े हो गए, तब तक तो खड़े होकर माला पहनाते थे भगवान को, लेकिन जब इतने बुढ़े हो गए तो वो बैठ के उठ ही नहीं पाते थे। एक बार तो ऐसे बैठ के उठने का प्रयास ही करते रहे, उठने का प्रयास ही करते, हाथ में माला लेकर प्रयास ही करते रहे, लेकिन उठ ही नहीं पाए। उस समय उनकी माला स्वीकार करने के लिए गोपीनाथ जी बैठ गए, साक्षात मूर्ति जो है ना, साक्षात बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए, और फिर उसके आगे वो बैठ के ही गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। इसलिए पूरे विश्व के अंदर एक ही मूर्ति है वो जो बैठे हुए, और वही मूर्ति है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु अपने 48वें साल में अंतर्धान हो गए, उस मूर्ति में प्रवेश कर गए वो। तो ऐसा अनोखा मंदिर है वो अनोखा मंदिर में गदाधर पंडित अपनी सेवा पूजा समाप्त करके, तभी वो अच्छी अवस्था में थे, सेवा पूजा समाप्त करके जब भगवान को शयन कराते थे दोपहर को, तो चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने को आते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु सवेरे के समय जगन्नाथ का दर्शन करते थे मंदिर में, और जगन्नाथ मंदिर का दातून प्रसाद, जगन्नाथ जी का वो दातून करते हैं, एक लकड़ी होती है उसको सामने से खोलते हैं और उसको कपूर लगाते हैं, और वो कपूर लगाकर जगन्नाथ जी का दातून करते हैं सुबह। तो वो जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जातून का प्रसाद, वो लेकर वो हरिदास ठाकुर को मिलने आते थे जंगल में अकेले सिद्ध बकुल के वृक्ष के नीचे, और सवेरे के समय जगन्नाथ जी का प्रसाद, महाप्रसाद और दातून का प्रसाद वो हरिदास ठाकुर के देते थे, और 3 घंटा वहां पर चर्चा करते थे उनके साथ भगवान के विषय में। फिर दोपहर का भोजन करते थे काशीश्वर पंडित के आश्रम में, क्या नाम है उसका मंदिर का, गंभीरा, उस मंदिर में जाते थे, भोजन करते थे थोड़ा विश्राम करके, फिर गदाधर पंडित को मिलने आते थे। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, का कारण यह है कि उस मंदिर में बैठकर गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के लिए श्रीमद् भागवत पढ़ते थे रोज। कितना अद्भुत है, राधा रानी स्वयं कृष्ण भगवान को भागवत सुना रही। और विशेष बात उसकी यह है कि प्रहलाद की कहानी 200 बार 300 बार सुनते थे, एक बार सुनते थे तो नाचते थे, और सुनाओ फिर उसको वापस सुनाते थे, फिर और सुनाओ, ऐसे प्रहलाद चरित्र उन्होंने सैकड़ों बार सुना है वहां पर। इसी कारण से, क्योंकि सुखदेव जी भी कहते हैं कि अगर भक्ति सीखना है तो प्रहलाद से सीखना चाहिए। क्या ऐसी विशेषता थी प्रहलाद में जो उनसे ही सीखना चाहिए? अनेक विशेषताएं हैं। हाँ, कथा में धीरे धीरे बताएंगे आपको, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे छोटे से बालक थे वो, 5 साल के थे, और वो स्वयं भी अपने शिक्षा में बताते थे। प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में अपने क्लासमेट्स को बता रहे हैं, कौमारम आचरेत प्रज्ञस, कि कौमार यानी 5 वर्ष की आयु में ही भगवान के विषय में ट्रेनिंग शुरू होना चाहिए, भक्ति का ट्रेनिंग शुरू होना चाहिए। ये वो 5 साल की आयु में, स्वयं 5 साल आयु में है, दूसरे को सिखा रहे हैं, मतलब 5 साल की आयु में स्वयं वो टीचर बन चुके थे, भक्ति के टीचर। दूसरी बात है, वो राक्षस के पुत्र थे, ऐसे नहीं कि वैष्णव के घर में, ब्राह्मण के घर में परवरिश हुई है उनकी, सब भक्त हैं घर में वैष्णव भगवान के, जैसे हमारे विभीषण हैं, हाँ राक्षस के भाई है वो, राक्षस परिवार में रहते हैं, राक्षस के राज्य में रहते हैं, फिर भी भगवान का भजन कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम वैष्णव में गिना जाता है। वैष्णवों की जब होती ना आहुति, तो हम विभीषण आए स्वाहा भी करते हैं, विभीषण को भी आहुति अर्पण करते हैं। ये लोग विशेष लोग हैं, क्योंकि वो कैसे प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान के भक्त बने हैं। अनुकूलता में सब लोग बन सकते हैं, क्या सब कुछ अच्छा है, पैसा है, धन है, सब कुछ ऐश्वर्य है, घर है, खाने पीने को चीजें हैं, सब प्रकार का सुख है, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ अच्छा है, इजी है, तो कर सकते हैं, लेकिन संकट आने पर कौन करता है, तुरंत बहाने बनाएगा, नहीं नहीं मेरे पति मुझे सपोर्ट नहीं करते, नहीं नहीं मुझे सासू को बीमारी है, मैं नहीं कर सकता, ऐसे कई प्रकार के कारण बोल सकते हैं आप। लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो भगवान का भजन करता है, उनका वर्णन भागवत में फिर आ जाता है, और हम लोग ना सब लोग ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, हो सकता है मेरा कथा इतना बोरिंग होगा, कुछ देर बाद आपको नींद भी आने लगेगी 5-10 मिनट के बाद में, लेकिन जब गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को प्रहलाद का चरित्र पढ़ के सुनाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए सुनते थे उसको, डांसिंग श्रवण, नाचते हुए वो प्रहलाद का चरित्र सुनते थे, और समाप्त होने पर कहते थे और सुनाओ, फिर वो बाबर सुनाते थे उसको। इस तरह से ये प्रहलाद जी का चरित्र का महात्म्य है। तो कथा शुरू ऐसे होती है कि देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध होता है, उसके पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इन दोनों का जन्म होता है। हिरण्याक्ष बड़ा भाई है, हिरण्यकशिपु छोटा भाई है, लेकिन हिरण्याक्ष का भगवान वराहदेव वध कर देते हैं, तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है, और वो भगवान विष्णु का वध करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने को चला जाता है जंगल में। आज तक के इतिहास में कहा गया है कि पूरे इतिहास में साधुओं के और राक्षसों के जितना इतिहास है, आज का सृष्टि का इतिहास है, जब से निर्माण हुआ है तब से राक्षस हैं, जब से भगवान के भक्त हैं, तब से पूरे रिकॉर्ड में इतनी कड़ी तपस्या आज तक किसी ने की है जितनी हिरण्यकशिपु ने की है। ऐसी तपस्या की बिना खाए पिए, दाहिने पैर के एक अंगूठे पे खड़ा है वो पूरा शरीर, और कितना साल खड़ा है, 1,000 साल खड़ा था वो, इतना उसका कठोर तपस्या था कि उसका शरीर जो है ना, उसके मांस पूरा चींटियों ने खा लिया, और केवल अस्थि पंजर यानी हड्डी को पिंजरा बच गया खाली, उसमें प्राण थे उसके, बाकी मांस वास सब चींटियों ने खा लिया था, पूरा चींटियों का घर बन गया था उसके शरीर के ऊपर, और एक पांव के एक अंगूठे पर खड़ा है, एक पांव फोल्ड करके घुटने पर रखा है, और दोनों हाथ ऐसे ऊपर है, और आंख बंद है, ऐसे करके खड़ा है। एंड में जब ये तपस्या, घनघोर तपस्या करता है, तो उसके सर से अग्नि निकलती है, और वो ज्वाला जो है ना, वो स्वर्ग लोक ब्रह्मा लोक तक पहुंचती है उसकी गर्मी, और ऐसा नहीं कि भाई चलो गर्मी आए तो एसी लगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसी गर्मी कि उसको कोई सहन नहीं सकता है। स्वर्ग लोकों में कोई तापमान का प्रॉब्लम नहीं होता, हमेशा तापमान स्थिर रहता है, कभी बहुत गर्मी बहुत सर्दी नहीं होती, लेकिन उस बीच में स्वर्ग लोक तक तो इसकी आँच पहुंच गई, वो सब परेशान हो गए, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा कि भाई क्या हो गया तेरे को, इतना क्यों परेशान, प्रसन्न होकर नहीं आए वो, मजबूर होकर आए, देवताओं ने बोला महाराज जाइए आप दर्शन दीजिए, तो ये हाहाकार मचा देगा, पूरे 14 भुवन जला देगा ये। तो जब ये युद्ध हो रहा था, सॉरी जब ये तपस्या हो रही थी, तब देवताओं ने देखा कि हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, राक्षसों का नेता, तो अच्छा मौका है, अभी राक्षसों पर हमला करेंगे तो उनको परास्त कर सकते हैं, तो देवताओं ने उसी समय हमला किया, ये तो अग्नि बाद में निकला, उसके पहले हमला किया, और देवताओं ने राक्षसों को परास्त कर दिया, और हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयाधु, उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि बीच में एक छोटा प्रसंग हुआ था। तपस्या जब शुरू हुई थी तब एक ऐसा प्रसंग हुआ था कि एक तोता जो है ना वो आके ऐसा बैठ गया जहां पर ये तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के पास आके बैठ गया और बार बार विष्णु 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 ऐसे बोलने लगा। तो ये विष्णु जो है जिसको मारने के लिए तपस्या कर रहे हैं ना, विष्णु शत्रु है, शत्रु उनका, तो ये बार बार विष्णु विष्णु बोला, इसका तपस्या भंग हो रहा है, ध्यान भंग हो रहा है, फिर विष्णु विष्णु फिर तपस्या, तो बहुत परेशान हो गया वो और तपस्या छोड़कर घर पे आया त्रस्त होकर। और वो विष्णु विष्णु उसके मन में गूंज रहा था। उस समय अपने पत्नी का संबंध किया और पत्नी गर्भवती हो गई, वापस तपस्या को चला गया। उसके बाद में देवताओं ने आक्रमण किया और देव राक्षसों को परास्त किया और ये कयाधु गर्भवती को अरेस्ट किया और उसको लेकर जा रहे थे। तो उस समय नारद मुनि वहां पर आए, बोले कहाँ ले जा रहे हैं इनको, बोले राक्षस की पत्नी है, इसके पेट में राक्षस का गर्भ है, जैसे जन्म होगा तो हम उसको मार डालेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं इसको मत मारना, राक्षस का पुत्र होने पर भी ये राक्षस नहीं है, ये परम वैष्णव है, इसलिए आप इनको मत ले जाइए, इस माता जी को मेरे आश्रम में भेज दीजिए, वो वहीं रहेगी जब तक वो पति तपस्या करके नहीं आएगा। और फिर नारद मुनि ने गर्भावस्था में उस माता जी को, कयाधु माता जी को भागवत सुनाया, श्रीमद् भागवत। और गर्भ अवस्था में प्रहलाद ने वो पूरा भागवत सुना अपने गुरु के मुख से, यानी गुरु बन गए नारद मुनि जी। ये कथा ऐसी बार बार आती है, अभी मनु ने भी चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है वो भी गर्भावस्था में सुना था, सुभद्रा जी गर्भवती थी और कृष्ण भगवान समझा रहे थे, वो सो गई थी लेकिन अंदर का गर्भ जो है वो सुन रहा था। उसी प्रकार से कयाधु तो सो रही थी, उम्मीद है कि आप नहीं सोते होंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कयाधु एक तो बीच में सो रही थी और दूसरा भी कारण बताया गया है कि कयाधु का ध्यान उस कथा पर नहीं था, वो बड़ी भयभीत थी, चिंतित थी, अपने पति कभी लौट के आएंगे उसके इंतजार में थी वो। इसलिए नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, परम शुद्ध भक्त हैं, वो वर्णन करते जा रहे हैं भागवत जी का और कयाधु का ध्यान यहाँ वहाँ एकाग्र नहीं है, लेकिन प्रहलाद गर्भावस्था में पूरी तरह सुन रहे थे उसको। फिर यथावकाश हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा दर्शन देते हैं, फिर वो बहुत सारे वरदान, पहले वरदान क्या मांगता है वो, सबसे पहला वरदान क्या मांगता है, ब्रह्मा जी पूछते हैं तथास्तु क्या मांगना चाहते हो, तो वो कहता है कि मुझे अमर बना दो। ये राक्षसों का ये प्रॉब्लम है, हाँ जहां भी कुछ तपस्या करते हैं पहले बोलते हैं अमर बना दो, उन्होंने भी वेद पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी वो अमर बनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया उनको, ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद भी अमर नहीं हूं, अगर अमर किसी को बनाने की विद्या मेरे अंदर होती तो सबसे पहले मैं खुद को अमर बना देता, फिर आपको बनाने का समय आता है, तो मैं खुद अमर नहीं हूं, आपको अमर नहीं बना सकता। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं भी ऐसे वरदान की लिस्ट बना दूंगा कि मृत्यु कवर हो जाएगा उसके अंदर मृत्यु होगा ही नहीं। तो मृत्यु किससे किससे होती है, शस्त्र से होती है, अस्त्र से होती है, हाँ और पुरुष से होती है, स्त्री से होती है, जानवर से हो सकती है, दिन में हो सकती है, रात में हो सकती है, जल के अंदर हो सकती है, भूमि पर हो सकती है, आकाश में हो सकती है, और किस में हो सकती है बता, हाँ नहीं, सुबह हो सकती है और शाम को हो सकती है, मैं मृत्यु कहाँ हो सकती है वो पूछ रहा हूँ, कभी हो सकती है पूछ रहा हूँ, और 12 महीने के किसी महीने में हो सकती है, तभी आपको पता चलेगा अधिक मास का कनेक्शन क्या है। उन्होंने भगवान से ये भी, ब्रह्मा जी से ये भी मांगा कि 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली हिरण्यकशिपु का वध किस महीने में हुआ है, अधिक मास में हुआ है, 13वें महीने में हुआ, जो वरदान उन्होंने मांगा नहीं था तो मनुष्य से मृत्यु नहीं होगी, राक्षस से मृत्यु नहीं होगी, देवता से मृत्यु नहीं होगी, दानव से मृत्यु नहीं होगी, जानवर से नहीं होगी, किसी भी जीव से नहीं होगी जो ब्रह्मा ने निर्माण किया है, वो तो पब्लिक कवर कर दिया, जो जिसके भी हाथ से मृत्यु होना है, शस्त्र से नहीं होगी, अस्त्र से नहीं होगी। शस्त्र के और अस्त्र में अंतर क्या होता है, किसी को मालूम है, हाँ अस्त्र जो है वो बाण से ही चलाते हैं, लेकिन वो अस्त्र बाण चलाने समय मंत्र उच्चारण करके चलाते हैं। तो बाण पर समझा आपने सर्पास्त्र का मंत्र बोल दिया, तो बाण पर सर्प सवार हो जाते हैं और वो सर्प आपको काटेंगे, जो भी है सांप, सांप का परिणाम होगा। अग्नि अस्त्र मतलब अग्नि अस्त्र जो है ना, वो बाण के और बाण को संधान करके मंत्र बोलेंगे तो बाण के माध्यम से अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। निहारिका अस्त्र मतलब बाण पर आप मंत्र बोलेंगे तो बर्फ हो जाएंगे सब। सम्मोहन अस्त्र मतलब सम्मोहन का मंत्र बोलेंगे, बाण छोड़ेंगे तो आप सब लोग हिप्नोटाइज हो जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे या तो सो जाएंगे। निद्रास्त्र, निद्रास्त्र भी होता है, वो डालेंगे सब सब सामने वाले सो जाएंगे, युद्ध नहीं कर पाएंगे। और शस्त्र का मतलब क्या है, एक्चुअल तलवार लेके मारना या बाण लेके मारना या तो गदा से मारना या पत्थर से मारना, शस्त्र से बोलते हैं। तो शस्त्र अस्त्र में अंतर है, तो वो दोनों पता था उसको, दोनों ही बोल दिया उसने। समय का भी बोल दिया कि सुबह भी नहीं होना चाहिए, दोपहर को भी नहीं, रात को भी नहीं होना चाहिए। बचा क्या, सब कुछ हो गया कवर उसमें, 12 महीने का काल भी कवर हो गया, तो अभी मृत्यु तो हो ही सकती नहीं है। तो उस ब्रह्मा जी ने तुरंत हाँ बोल दिया उसको। रावण ने भी ऐसे ही वरदान मांगे थे, लेकिन रावण को भी गर्व था, उसने मनुष्य से और जानवर वानर से भय अभय नहीं मांगा था। बोले मनुष्य वानर क्या होता है, वो तो मैं ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, उनसे क्या वरदान मांगने के, इनसे बचाओ मुझे। तो भगवान बराबर मनुष्य जन्म जन्म लेकर आए, और सभी देवताओं को वानर जन्म में आने के लिए भगवान ने बोला। उस तरह से उन्होंने वरदान मांगे और ब्रह्मा जी ने तुरंत हाँ बोल दिया उनको, तुरंत हाँ बोल दिया। लोगों को लगता है कि ब्रह्मा जी ने गड़बड़ कर दिया, बहुत गड़बड़ काम किया, लेकिन नहीं। ब्रह्मा जी एक तो आए सबसे पहले, समय पर पहुंचे, विश्व का नाश होने के पहले पहुंचे उधर, और उसको पूछा और जो है वो दे दिया उसको तुरंत। क्योंकि तो जानते थे कि भगवान जो है ये सबको पालन करके भी उसको मारेंगे, ये भगवान को उनको मालूम था। फिर ये सब वरदानों से अहंकार और मत्त होकर उन्होंने पृथ्वी पर सब स्वर्गलोक में सब हाहाकार मचा दिया और सब देवताओं को अपना गुलाम बना दिया। सब जगह बोला यज्ञ बंद करना चाहिए, अभी यज्ञ जो होगा वो मेरे नाम से होगा, भगवान का नाम जप करना बंद करो और मेरा नाम जप करो। हम लोग को पता नहीं वो कितना पावरफुल था, उसका भाई था ना, वो इतना पावरफुल था कि उसने लात मार कर पृथ्वी को गेंद की तरह समुद्र के नीचे फेंक दिया था। हम लोग को कभी कभी फुटबॉल को भी लात मारने को जमता नहीं, लेकिन पृथ्वी को फुटबॉल जैसा बनाकर लात मारो, वो कितना बड़ा होगा वो व्यक्ति, सोचो आप, तो पृथ्वी को लात मारकर फेंक सकता है, ऐसा ये भयंकर था। इतना भयंकर था कि ये भवें ऐसे ऊपर करता था ना तो देवता इंद्र जो वहां कांपता था अपने स्वर्ग में, इतना शक्ति था उसके अंदर। क्योंकि इतना ही नहीं मांगा उसने, मृत्यु से अभय नहीं मांगा, सारे शस्त्र, सारे अस्त्र, सारी सिद्धियां, सारी जादू, सारो टोना, सारे तंत्र, जितना भी सिद्धियां होती ना, आप जो चाहे सिद्धि बोलो, सब सिद्धि उसके पास में थी। सबसे छोटा बन जाना, सबसे बड़ा बन जाना, एक लोक उत्पन्न करना, अदृश्य हो जाना, इस प्रकार के भयंकर सिद्धियां थी उसके पास। मतलब एक मनुष्य या एक जीव, मनुष्य जैसा जीव, राक्षस भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य मनुष्य के कई प्रकार होते हैं, राक्षस, देवता, दानव, दैत्य, ऐसे मनुष्य के प्रकार है वो। तो एक मनुष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या क्या प्राप्त कर सकता है, वो सब कुछ हिरण्यकश्यप के पास में था। ऐसा कोई चीज नहीं जो प्राप्त नहीं है उसको। सब देवता भयभीत, सबका सिंहासन खाली, सब जगह पर इसका ही राज्य है। तो उसकी इतनी पावर थी कि सब ऋषि मुनियों को उन्हें यज्ञ करवाना बंद कर दिया। वो बोला मैं ही भगवान हूं, आज के बाद केवल मेरा नाम जपा जाए। ऐसा कोई कह सकता है, इतना बड़ा कोई है क्या दुनिया में? लेकिन वो इतना था भयंकर आदमी था कि सबको उसने उसका नाम जप करने को लगाया। फिर कुछ दिन पश्चात प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद पर बहुत ही प्रेम था उसको, बहुत प्रेम था, इकलौता बेटा था वो। इतना सारा राज्य पिता ने कमाया है, त्रिभुवन पे राज्य कमाया, इंद्रलोक भी कमाया, पाताल लोक भी उसका राज्य, पृथ्वी पर भी उसका राज्य है, सब लोग भयभीत है, सबका वो अनभिषिक्त सम्राट है, कोई उसको सामना नहीं कर सकता है, खड़ा नहीं हो सकता उसके सामने। और ये सारा जिसका राज्य है उसका पुत्र प्रहलाद है, मतलब वो कितना प्रेशियस लड़का होगा, कितना कीमती राजपुत्र होगा वो। तो उसको उसने अपने गुरुकुल में डाल दिया, स्कूल में डाल दिया, अपने द्वारा पठित शिक्षकों को उनको पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेज दिया। तो बहुत देर तक गुरुकुल में उसको सिखाई चालू किया, उसने पढ़ाई चालू किया। तो कुछ देर बाद में पिताजी ने अपने पुत्र को बुलाया और बोला कि क्या सीखा तुमने, बताओ मुझे, स्कूल में क्या पढ़कर आए? बड़े प्रेम से पूछा। तो पहला श्लोक क्या बताया उसने? सबसे पहला उत्तर क्या दिया? उसने उत्तर दिया कि मनुष्य को सब कुछ छोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, ऐसे बताया शायद। नहीं, नत्स्वादु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, ये श्लोक बताया कि असुरवर्य, तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरे गुरुकुल में इसको ये कुछ कौन सिखा रहा है? तो गुरु तुरंत गुरुओं को बुलाया, हे शंड अमर का, तुम लोग क्या सिखा रहे हैं उसको? बोले हमने नहीं सिखाया उसको, पता नहीं कहाँ से सिख रहा है। बोले तुम्हारे ना होते हुए देवता लोग आ रहे क्या उसमें, चुप चुप कुछ सिखा रहे कुछ उसको बीच वाले समय में, रेस्टिंग पीरियड में? बोले नहीं, यहां पर कड़ा पर्याय रहता है, कोई देवता प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर बहुत क्रोध आया उनको, तो क्रोध आके पहला तो क्रोध सारा गुरु जी के पे निकाला, तो लड़का बच गया। माता को मालूम पड़ा कि पिताजी गुस्सा किया बहुत, तो फिर माता ने समझाया, देखो बेटा अगली बार जाओगे ना तो ये सब नहीं बताना उनको दोबारा गुरुकुल भेजा। तो गुरु जी कहा ठीक है भाई, हमारी मिस्टेक होगी, हम लोग शायद सोते होंगे, कभी कभी कोई आते होंगे, अभी हम ध्यान रखेंगे उसके ऊपर और पूरा उसको कड़ी निगरानी में सिखाते हैं। फिर वो दोबारा बुलाते हैं, उस समय माँ क्या करती है, उसको अच्छा मेकअप करती है, अच्छा ड्रेस पहनाती है ताकि उसको सुंदर देख के पिताजी को क्रोध ना आ जाए, वो थोड़ा गुस्सा करने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा उसको। तो अगली बार पूछा, हाँ बेटा, गोद में बिठाया, हाँ बेटा अभी तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? तो कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम कि भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, आत्मनिवेदन करना चाहिए, तुष्टि करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। एकदम क्रोध आया, कहाँ से सीखते हो सब कुछ? फिर शंड अमर को बुलाया, तो कांपते हुए आ रहे, भैया हमने कुछ नहीं किया, हमने बिल्कुल ये नहीं सिखाया, हो सकता है दुश्मन देवता लोग उसको छुप छुप के आके सुनाते होंगे। तो फिर वो वापस गुरुकुल गया, तो दोस्त लोग उसको पूछ रहे हैं, अरे तुम जो जाके पिताजी को बता रहे हो, हमने तो यहाँ सीखा नहीं साथ में, कभी साथ में पढ़ते सब कुछ, तुमने ये सब कहाँ सीखा? तो कहते कि मेरे को गुरु ने सिखाया। बोले गुरु छंडार अमर का है, वो तो ये सिखाते नहीं है, आप किस गुरु की बात कर रहे हैं? वो कह रहे ये सब कुछ बातें मैंने मेरे गुरु से गर्भ अवस्था में सुनी थी, इसलिए मुझे ये सब पता है। तो फिर जब ये सब हुआ तो वो राक्षस लोग, हिरण्यकश्यपु ने बोला इसको मार डालो। बड़ी लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, सातवें स्कंद, पूरा सातवां स्कंद जो है ना वो इस कथा से बना हुआ है। उसके अंदर क्या क्या नहीं है, गृहस्थ आश्रम के उपदेश हैं, हिरण्यकश्यपु का अत्याचार का वर्णन किया है, प्रहलाद जी का गौरव वर्णन किया है। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया, तीसरी बार भी जाके उसने ऐसा ही कुछ भगवान के बारे में बोला कि वन में चले जाना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया। और वो कन्विंस भी हो गया कि ये शंड अमर का इसको नहीं सिखा रहे हैं, ये खुद ही कुछ अपना बोल रहे हैं और खुद ही देवताओं के द्वारा इसका मति जो है ना वो दूषित हो गया है, देवता उसको कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में सिखा रहे हैं, अदृश्य रूप में, इसके लिए उसको भी मारना ही जरूरी है। क्योंकि वो कहता है, वो सोचता है कि देखो जब कैंसर होता है ना किसी को तो पहले दवा देनी चाहिए, ऐसे वर्णन है उसके अंदर, कर्क रोग जिसको होता है वो दवा देनी चाहिए, लेकिन जब कर्क रोग बहुत बढ़ता है तो उसको शरीर के तरफ से काट कर अलग करना चाहिए, नहीं तो वो पूरे शरीर में फैलकर पूरा शरीर को खा जाएगा और शरीर ही पूरा नष्ट हो जाएगा। तो ये लड़का जो है मेरे वंश में लगा हुआ कैंसर जैसा है, इसको समय पर काट के फेंक जाना चाहिए, तो ये सब राक्षस जाति को सब जगह फैल कर नाश कर देगा, जाओ इसका वध करो। सब राक्षसों को बुलाया, उनके ना राजा के हमेशा होते हैं ना वध करने वाले, जिसको क्या कहते हैं, जल्लाद, जल्लाद कहते हैं, उनके पास सब प्रकार के शस्त्र होते हैं और किसी भी तरह से मारने का, किसी को फांसी देने का है या तोप के मुंह में देने का है या पहाड़ से फेंकने का है, वो सब वो कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ। इतने भयंकर राक्षस थे वो, इतना छोटा सा बालक था वो, जा जाकर उसने क्या क्या नहीं किया बालक को, बालक को भाला चलाया, उसके ऊपर तलवार चलाई, बाण चलाए, गदा चलाई, हर प्रकार के शस्त्र होते हैं ना राक्षस के पास, भयंकर शस्त्र होते हैं, अलग अलग शेप के शस्त्र होते हैं, धारदार, वो सब चलाया उसके ऊपर, वो चले ही नहीं उसके ऊपर। बोला भी क्या किया जाए उसको, उसको पहाड़ से फेंक दिया जाए, तो उसको पहाड़ से फेंक दिया। तो भगवान ने उसको हाथ में गुलाब जैसे बोलते ना, गुलाब का बिछौना होता है ना, बिछौना ऐसे नरम नरम हाथों में झेल लिया उसको। वो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे गायन कर रहे हैं। फिर उसको समुद्र में फेंक दिया तो उधर नहीं डूबा। फिर उसको विष का प्याला पिलाया, बोला विष पियो, जबरदस्ती पिलाया तो कहते हैं कि विष का उसके ऊपर असर ही नहीं हुआ। फिर उसको हाथी के पैर दिया तो हाथी ने पैर उठाया, शराब पिलाकर हाथी को पैर नीचे दिया उसको, तो हाथी ने पैर उठाया तो पैर उसके ऊपर रखा नहीं, और कहीं रख दिया। फिर विषैले सांप से भरे भयंकर बिल में डाल दिया उसको, एक सांप भी काफी है, ऐसा काटेगा तो मर जाएगा, तो किसने भी उसको नहीं काटा। सांप के बीच में आराम से बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान को वंदन कर रहा है वो। फिर भी परेशान हो गए वो, अभी क्या करें, इसको जला देना चाहिए। तो होलिका को बुलाया, हिरण्यकश्यप की बहन है वो, उसको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था तपस्या करने के बाद। उसने वरदान मांगा था कि मैं जब भी अग्नि आएगा तो मुझे अग्नि प्रभाव नहीं करना चाहिए, मैं जलना नहीं चाहिए, और मेरा शत्रु अगर मेरे सामने आता है और मेरा अहित करना चाहता है तब मैं जलने का बहाना करूंगी और लगेगा कि मैं जल रही हूं लेकिन शत्रु जलना चाहिए। ये वरदान था उसको, तो लग रहा अच्छा है। इसके गोद में प्रहलाद को इसको गोद में बिठाते हैं और आग लगा देते हैं, होलिका तो जलेगी नहीं, ये जलकर भस्म हो जाएगा, तो उसको गोद में बिठाते हैं और आग लगा देते हैं, तो होलिका जल जाती है और बच्चे को कुछ नहीं होता है। तो जब जलने लगती है वो तो पुकारती है, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी क्या हुआ, आपका वरदान कैसे फेल हो रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बताते हैं कि ये वरदान मैंने तुम्हें अपनी जान के संकट से बचाने के लिए दिया था, किसी को मारने के लिए नहीं दिया था, तो मेरे वरदान का दुरुपयोग करना चाहती हो तो मेरा वरदान फेल हो गया वहां पर। तुम्हारे ऊपर अगर आग का संकट होता, कोई आपको जलाने का प्रयास करता तुम्हें मारने के लिए, तब तुम्हें वो वरदान दिया था कि आग आपको जलाएगी नहीं, लेकिन तुमने इस निष्पाप बालक को, भगवान के भक्त को जलाने के लिए अपने वरदान का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, इसलिए जलो अभी। जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद जी भाग निकल के आते हैं। इस तरह से हर प्रकार के भयंकर मृत्यु का कारण जैसे बन सकता है, हर प्रकार के प्रयत्न से भी प्रहलाद बच जाता है। कोई ऐसा मार्ग नहीं बचाते वो कि जिससे मृत्यु नहीं हो सकती, सारे मृत्यु के प्रयास कर चुके हैं लेकिन ये बच्चा तो मरता नहीं है, और सारी खबर रिपोर्ट आ रहा है हिरण्यकश्यप के साथ, आज ये किया तो भी नहीं मरा, हाथी के पांव दिया तो भी नहीं मरा, आज अग्नि में जलाने का कोशिश किया तो बहन जल के मर गई, वो नहीं मरा। तो हिरण्यकश्यप परेशान हो जाते एकदम, उसको बुला लेते, तब भी उसकी माँ समझाती है कुछ गलत बात मत करना। फिर कहता है प्रहलाद तुम्हारे में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे वीर आपको मार नहीं सकते हैं, कहां से शक्ति आ रही तुम्हारे अंदर। तो बोला इतना वो कांप रहा है आग से लाल बबूला होकर, ये शांत खड़ा है, वो कह रहा है जिस जगह से आपको शक्ति प्राप्त हो रही है उसी जगह से मुझे भी शक्ति प्राप्त हो रही है, इतना शांत उत्तर देता है वो एकदम पीसफुली। भय नाम की चीज नहीं उसके अंदर, इतना पहाड़ जैसा पिताजी है, इतना भयंकर है कि वो भवे उठाने पर देवता कांपते हैं थर्राते हैं। वो पिताजी इतने क्रोध में पूछ रहे हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए ना, बोले सब चीज को मैं कंट्रोल कर रहा हूं दुनिया में, हवा और पानी भी मेरे कंट्रोल में चल रहा है, जब चाहे बरसाते हो जब चाहे बंद कर देता हूँ, जब चाहे ठंडी हवा मंगा ठंडी हवा आ जाती है, जब चाहे बारिश मौसम को बुला लेता हूँ, ऐसा था वो। हमको ऐसा वेट कर रहे हैं बारिश आएगी आएगी आएगी, हमारी इच्छा से 15 मई को बारिश ला सकते हैं क्या। हिरण्यकशिपु जब चाहे तब सूर्यास्त करता था, जब चाहे तब सूर्योदय करता था, जब चाहे तभी वसंत ऋतु मंगाता था, जब चाहे तभी वर्षा ऋतु मंगाता था, जब चाहे तभी ठंड मंगाता था, जब चाहे तभी फूल खिलाता था, जब चाहे तभी जो चाहे करता था, सारे देवताओं का कार्य अपने नियंत्रण में लेकर उनको मैनिपुलेट करता था वो। ऐसा महान व्यक्ति एक बालक को मार नहीं सकता तो कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा उसको, वो तिलमिला उठाई वो, इसलिए इस गुस्से में था वो कि इतना मैं शक्तिशाली हूं, सर्व सिद्धि मेरे पास में है, और एक 5 साल के बालक को मैं और मेरे आदमी मिलकर मार नहीं सकते, इसलिए बुलाता है उसको, पूछता है। तो वह उत्तर देने के बाद बोलता है कौन है वो, तो कहता है विष्णु भगवान है, सर्वव्याप्त है वो, हर जगह पे समाए हुए हैं। तो कहाँ है तुम्हारा विष्णु, वो शांत उत्तर देता है कि वो तो कण कण में समाए हुए हैं। अभी आपको गुस्सा आ रहा है और मैं शांत उत्तर दे रहा हूँ, भी शास्त्र के आधार पर श्लोक बोल के उत्तर दे रहा हूँ, तो कितना गुस्सा आएगा आपको। कहाँ है तुम्हारा विष्णु, बोले वो कण कण में समाया हुआ है, तो यहां वहां देखता है, और तो ये खंबे में भी है क्या, खंबे में भी है। तो उस समय ना अपनी तलवार निकालता है वो। उसकी तलवार जो थी ना वो इतनी भयंकर थी कि उसको खोलने के बाद जो चमकती थी ना तो देवता भी कांपते थे। पृथ्वी पर खोल दिया, देवता भी कांपते थे उधर, इतनी भयंकर। जैसे कंस की तलवार भी थी, रावण की तलवार भी ऐसी थी, इसको केवल खोलने से सब लोग भयभीत हो जाते थे, बाद में चलाने की बात तो अलग ही है। तो वो तो खुद इतना पहाड़ जैसा, उसका शरीर पत्थर जैसा, हाँ इतना भयंकर शरीर, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी तलवार, दोनों हाथ से उठाकर ऐसे बोल रहा है कि अभी मैं मार डालूंगा तुझे। मुझे अभी भी याद है, मेरी बेटी ने प्रहलाद का काम किया था ड्रामा में, और आदिकेश्वर प्रभु है ना डॉक्टर शेट्टी हमारे, उन्होंने हिरण्यकश्यप का काम किया था। तब मेरी बेटी छोटी सी थी, आज तो शादी हो गई उसकी। और मेरी मम्मी जो है ना, वो थिएटर में ड्रामा जब हो रहा था ना, मिस्टर ग्रोवर जी, जब ड्रामा हो रहा था ना, मेरी मम्मी फ्रंट लाइन बैठी थी, फ्रंट लाइन में फर्स्ट रो में बैठकर ड्रामा देख रही थी। और मेरी छोटी सी बेटी प्रहलाद बनकर पिताजी को बोल रही है कि सब जगह समाये हुए हैं वगैरह वगैरह डायलॉग बोल रही है। तो ये डॉक्टर शेट्टी ने इतना बड़ा तलवार उठा उठाया ना, मेरी मम्मी डर गई पूरी, बाप रे इतना बड़ा आदमी तलवार उठा के मेरे बेटी पोते के ऊपर हमला करने जा रहा है। तो ये तो ड्रामा था, उसमें तो डॉक्टर शेट्टी भी भाई आजकल के जमाने के हाइट के, हमारी बेटी भी छोटी सी है, लेकिन वो जमाने में सत्ययुग में प्रहलाद महाराज को मारने वाले हिरण्यकश्यप कैसे भयंकर हुए होंगे, जिसके केवल होने से ही सब लोग कांपते थे। वो व्यक्ति सब विफलताग्रस्त होकर, फ्रस्ट्रेट होकर मारना चाहते अपने बालक को, तो कितनी भयंकर अवस्था होगी। सारे देखने वाले माता, उसकी माता भी थी उसके, सब लोग कांप रहे हैं कि भी वो अपने बेटे का वध करेगा। तो उस समय ना उसने दाएं हाथ की मुट्ठी से वो खंभे पर हाथ मार दिया, जिसको प्रहलाद ने कहा था कि इस खंभे में भी है, उसको ऐसा मारा अपमानात्मक अपमान के रूप में। और यह हाथ से तलवार मारने गया उसको, तो धड़ाड़ करके इतनी भयंकर गर्जना हो गई, इतनी भयंकर गर्जना हो गई कि ब्रह्मा लोक तक लोग सब कांपने लगे। प्रचंड प्रलय काल में जब होता ना गर्जना होती ना ध्वनि, उस तरह की ध्वनि उत्पन्न हो गई, जितनी उस खंभे से टूटने से नहीं होनी चाहिए, लेकिन खंभे में थे कौन, खंभे में भगवान प्रकट हो गए। आचार्य बताते हैं कि जैसे ही अपने उंगली से प्रहलाद ने निर्देश किया कि ये खंभे में भी है, जिस क्षण उन्होंने वो उल्लेख किया उनका, उसी क्षण भगवान नरसिंह देव उसके अंदर प्रकट हो गए थे, जो प्रहलाद ने भी देखे कि भगवान तैयार है अवतार लेने के लिए। उसी कुछ क्षण के बाद में उसने मुट्ठी से उस पर प्रहार किया और वो ऐसा खंबा टूट गया जो कुछ टूटने का कारण नहीं था ऐसा, लेकिन चकनाचूर हो गया वो। और फिर बहुत बड़ी गर्जना सुनाई पड़ी, जिस गर्जना सुनाई पड़े पर कुछ समय हिरण्यकश्यप भी बहुत भ्रमित हो गया कि ये क्या, कौन सा ध्वनि है। उसके भी दिल में जो सबको डराता था, उसके दिल में भी भय पैदा हो गया कुछ समय के लिए। लेकिन भय पैदा होने पर भी उसका अहंकार जो है वो उस पर व्याप्त हो गया। उसका अहंकार क्या बोला, अरे मैं किसी भी जीव से नहीं मर सकता, लेकिन ये कोई अजीब जीव लगता है। उस समय उसको भी समझ में आया था कि ब्रह्मा जी के जितने जीव निर्माण किए गए हैं 84 लाख, उसके अंदर ऐसी योनि कोई नहीं है, आधा आधा सिंह और आधा मनुष्य। लेकिन फिर भी वो सोचते मन में, तो क्या हुआ, मैं हिरण्यकशिपु हूं, सब जीवों से मैंने अभय प्राप्त किया है, मैं इसका भी वध कर दूंगा। अहंकार कैसा होता है ना, अहंकार में हम लोग ज्ञान भी खो जाते हैं। उसको पता था कि कौन से लिस्ट में उसको अप्रूवल मिला है, ये भी पता था कि ये जीव जो है वो आधा मनुष्य आधा सिंह जो है वो ब्रह्मा जी के 84 लाख योनि में नहीं आता है। फिर भी अहंकार बोला कोई बात नहीं, मैं युद्ध करूंगा उससे। तो हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु और भगवान का युद्ध शुरू हुआ। सब देवता आकाश में प्रकट हो गए, डर के अभी क्या होगा, देवताओं को भी श्रद्धा नहीं थी कि भगवान बचेंगे क्या, जो हिरण्यकशिपु इतना भयभीत इतना भयंकर व्यक्ति है उसको भगवान मार सकेंगे क्या, इतना भयभीत थे वो। अपने इतने भय के कारण अपना ज्ञान भी खो चुके थे, अरे ये विष्णु है इसको कौन मार सकते हैं। ये भय ऐसा होता है, जब अज्ञान होता है ना तो भय पैदा होता है, ज्ञान जिसको है उसको भय नहीं पैदा होता है। अज्ञान अंधकार की तरह होता है, अंधकार में सब लोग डरते हैं, किधर क्या है, राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, गड्ढा है कि गिर जाएंगे क्या, फिसल जाएंगे, लेकिन लाइट लगाते ही आदमी का डर खत्म हो जाता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है तो कुछ भय नहीं होता है। तो अज्ञान भी ऐसे अंधकार की तरह होता है, और अज्ञान में ही भय पैदा होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो भय मनुष्य भय मुक्त हो जाता है, और ज्ञान क्या प्राप्त होता है कि भगवान के चरणों का सहारा लेने से सब भय मुक्त हो जाते हैं। तो ज्ञान मतलब भगवान के चरणों में आश्रय लेना चाहिए, ये ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान प्राप्त होने पर वो जीव भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है और निर्भय हो जाता है। ऐसा ही निर्भय प्रहलाद था जिसने भगवान के चरणों में आश्रय ले लिया था। लेकिन देवता लोग क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि देवता लोग मिश्र भक्त हैं। देवता लोग भोग में इतने लिप्त रहते हैं कि उतनी 100% भगवान के चरणों का सहारा नहीं ले सकते। वो उनका आधा मन भोग में लिप्त रहता है, स्वर्ग लोक के आनंद लेने में मगन रहता है। इसलिए देवता लोग हमेशा कभी खुश होते हैं कभी डरते हैं, कभी खुश होते कभी डरते हैं। रावण आया तो डर गए थे, हिरण्यक्ष आया तो डर गए थे, हिरण्यकशिपु आया तो भी डर गए थे। क्यों डरते हैं? क्योंकि आधा उनका चेतना जो है वो भोग में लिप्त है, स्वर्ग के भोग लेने में उनकी आकांक्षाएं बनी हुई है। और एक प्रहलाद उनके सामने खड़ा है, वो नहीं डर रहा है। उनके सामने ही प्रकट हो गए ना, वो भयंकर गर्जना करते हुए, खंभा टूट गया तो उसको भी डरना चाहिए। वो आराम से खड़े हैं, शांति से दिख रहे हैं, और घनघोर युद्ध होता है उनके अंदर। ऐसे कहते हैं कि दोपहर को 12 बजे के समय भगवान ने खंभा तोड़कर अवतार लिया और शाम तक युद्ध किया हिरण्यकश्यप के साथ। कैसा युद्ध किया? ऐसा वर्णन दिया है, आपने कभी बिल्ली को देखा है एक कागज के गोले के साथ खेलते हुए? कभी देखा आपने? उसको ऐसा लात मारेगी, फिर वो लाल कागज का गोला आगे जाएगा, फिर वहां तक पहुंचेगी, फिर उसके बाद कुछ खेलेगी, फिर वापस उसको फेंक देगी, वो फेंक के वापस आएगी, वापस लात मारेगी, वापस गोल गोल घूमेगी उसके साथ में, फिर खेलेगी। हमारे घर में बिल्ली ऐसे करते थे। वैसे आचार्य वर्णन करते हैं कि वैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ में खिलवाड़ किया, प्लेफुल गेम्स। वो तो भयंकर युद्ध लड़ रहा है और भगवान उसके साथ में गेंद गेंद के जैसा खेल रहे हैं, और ऐसा भी दिखा रहे हैं कभी वो हार रहे हैं तो देवता लोग डर के छुप जाते हैं, अरे ये भगवान हार रहे हैं, तो कहीं हिरण्यकश्यप ये फाइटिंग देखते हुए हमको ना देख ले, क्योंकि तो अगर भगवान मर गए तो ये आपको हमको आके मारेगा, क्योंकि आप क्या मजा देख रहे थे क्या उस समय, आपको भी मार दूंगा, ऐसे करके आपको मारेंगे। इसलिए जब भगवान हारने का नाटक करते थे ना तो ये लोग छुप जाते थे, जब भगवान जीतने का प्रसंग आता था तो ये बाहर आते थे देखने के लिए। इस तरह से तड़ैत मड़ैत, हाँ मुझे कैसा आत बाहर आत बाहर, क्यों? डर के मारे। कब लग रहा है भगवान जीत रहे तो बाहर आते थे देखने के लिए, और भगवान हारने का समय तो अंदर छुप जाते थे। इस तरह से भगवान ने शाम तक समय बिताया, सभी अस्त्रों से युद्ध किया गया, भगवान ने अपना सारा कौशल दिखाया। और जैसे ही संध्या समय हो गया ना, बस हो गया, अभी बस बहुत समय बीत गया। ऐसे उसको उठाया भगवान ने, उसको कुछ यकीन ही नहीं हुआ, अचानक युद्ध बंद कर दिया और उसको उठाया, और उसको उठाकर सीधे दहलीज पे चले गए। क्यों दहलीज पे चले गए? उसको यह भी वरदान था घर के अंदर और घर के बाहर, वो नहीं बताया मैंने आपको। सारा जितना था ना, जितना भी क्लॉज हो सकता है, घर के अंदर भी मृत्यु होनी चाहिए, घर के बाहर भी नहीं होनी चाहिए, जमीन पर नहीं होनी चाहिए, आकाश में नहीं होनी चाहिए, जल में भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे सब कुछ कवर कर लिया था। तो भगवान ने क्या किया, घर के दहलीज पे चले गए, मतलब घर में भी नहीं बाहर भी नहीं। फिर अपने पैर, दो पैर थे उनके, एक पैर उन्होंने अपने दूसरे जंगा पर रखा, मतलब बीच में, ना जमीन में ना आकाश में, ऐसे बीच में ही रखा उसको। और फिर ना शस्त्र से ना अस्त्र से, 8 भुजा लेकर आए थे, सब में शस्त्र थे लेकिन कोई यूज नहीं करना था उनको, तो नाखून से, नाखून शस्त्र भी नहीं है अस्त्र भी नहीं है, वो शरीर का हिस्सा है, शस्त्र अस्त्र नहीं बोल सकते उसको, तो नाखून से उसको पेट फाड़ दिया। तो सबसे पहले मनुष्य नहीं या देवता नहीं या राक्षस नहीं या कोई जानवर नहीं, आधा मनुष्य आधा सिंह, तो वो उधर फुलफिल कर दिया। फिर नाखून से उनका पेट फाड़ दिया, दो हाथ से ऐसे पकड़ के रखा उसको टाइट, हिल ना जाए कोई, दो हाथ से फाड़ दिया और दो हाथ से उसकी आंतरे निकाल कर माला पहना दिया अपने आप को, और दो हाथ में शंख और पद्म लेके खड़े हैं। ऐसे क्रोध था भगवान को, क्यों इतना क्रोध था भगवान को? कहते कि साक्षात मूर्तिमान क्रोध बने थे भगवान उस समय, उससे अधिक क्रोधी कोई विश्व में आज तक हुआ नहीं है। और क्यों क्रोध कर रहे थे भगवान? क्योंकि उनके भक्त का अपराध किया था उसने। भगवान सब कुछ सह सकते हैं लेकिन भगवान अपने भक्त का अपराध नहीं सह सकते। इस प्रकार से उन्होंने वध कर दिया। तो ऐसे कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मा जी को पूछ रही है, अरे तुमने तो इतने वरदान दिए थे आपका, आपने उनको, ये कैसे बच रहा है, कैसे मर रहा है, उसको तो आपने अभय दे दिया था, पूरा अमरता का वरदान ही दे दिया था। तो कहते हैं जब भगवान किसी को मारना चाहते हैं उसको कौन बचा सकता है। और देखिए प्रहलाद को देखिए, उसको इतना मारने का प्रयास किया, हर प्रकार से, हर तरफ से, हर अस्त्र से, हर शस्त्र से मारने का प्रयास किया, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। उसको भगवान बचाना चाहते, उसको कौन मार सकता है? सब कुछ भगवान है, भगवान का सहारा लेंगे तो कोई आपको छू नहीं सकता है। इस तरह से भगवान ने हिरण्यकश्यप का वहीं कभी वध कर दिया। उधर भी उसके हाथ में तलवार थी, उधर भी भगवान को तलवार मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान ने ऐसे, कहते हैं ना वास्प, यानी का मतलब क्या होता है, कीटक के समान उसको पकड़ के चीर दिया। और उसको जब पेट फाड़ कर उसका जब अंत हो गया, तो भगवान ने उसके पेट के अंदर हाथ डाल के छाती में हाथ डाला, और उसका हृदय था ना हृदय, उसको जैसे फल तोड़ते ना, सब तोड़ दिया हृदय को, ऐसे जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद में उसको भी ऐसे सभा में फेंक दिया उसको। वो देखकर सारे राक्षस सेना भगवान पर टूट गई, उनको लगा अभी तो हमारा हमारा भी अंत होने वाला है, वो भी लेट अस फाइट। तो सारी राक्षस सेना भगवान पर आक्रमण करके चली गई। फिर भगवान ने सारे शस्त्र अस्त्र लेकर सबको खत्म कर दिया। उनको तो शस्त्र अस्त्र का वरदान नहीं था ना, तो सारे शस्त्र अस्त्र लेकर, जितने भी अस्त्र लेकर आए थे, सब सेना का वध कर दिया। उधर पूरी राजसभा जो थी ना, वो पूरी लथपथ हो गई खून से और शरीर टूटे हुए टुकड़ों से। और फिर भी भगवान गर्जना कर रहे थे, बार बार गर्जना कर रहे थे, इतना क्रोध था, उतना इतना क्रोध जब खत्म हो गया उनका, फिर भी मतलब वो जो वध हो गया सबका, फिर भी क्रोध समाप्त तो नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना उनको क्रोध था कि मेरे भक्त का अपराध किया इन्होंने। और फिर वहां पर चल के गए भगवान, सबका वध करके, सब खून में लथपथ, सब गिरे हुए हैं, हजारों लाखों सैनिक पड़े हुए हैं। फिर जाकर भगवान जाकर हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठ गए, और फिर भी चिल्ला रहे, गुर्रा रहे। अभी सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ मर गया, लेकिन भगवान अकेले गुर्रा रहे हैं। तो भी सब लोग, देवता लोग, अभी मालूम पड़ा ना भगवान जीत गए, तो नीचे उतर गए जमीन पे, दरबार में आ गए उनके। लेकिन सब कांप रहे हैं, सब कांप रहे हैं, इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, भगवान ब्रह्म भी कांप रहे हैं, सब लोग। लक्ष्मी देवी भी वहां प्रकट हो गई, वो भी कांप रही है। तो अभी क्या करें, भगवान इतने घुर्रा रहे हैं, तो क्या करें, अभी कैसे करें, शांत कैसे करें इनको? तो बोले बेस्ट व्यक्ति कौन है, उनकी पत्नी, वो जाकर शांत कर सकती है उनको। तो लक्ष्मी देवी को बोलने गए ब्रह्मा जी कि लक्ष्मी माता कुछ करिए। तो लक्ष्मी कहते मैं इनको पहचानती नहीं हूं, मैंने कभी भी उनको इस रूप में देखा नहीं है, हमेशा वैकुंठ में इतने शांत रहते हैं, शंख चक्र पद्म गदा लेकर इतने मुस्काते रहते हैं, इतना शांत मैं उनके मक्खन से भी अधिक कोमल चरण कमल में दबाते रहते हूँ हमेशा, ऐसा रौद्र रूप मैंने कभी देखा नहीं है, तो मैं इनको पहचानती नहीं हूँ, वे भी रूप में भी वो बदल कर आए, ये मैं नहीं जा सकती इनके पास। अभी किसी भी देवता की हिम्मत नहीं हो रही है उनको जाके शांत करने की, इसलिए तो महालक्ष्मी देवी के पास में गए थे, उन्होंने भी मना कर दिया। तो अभी पर ब्रह्मा जी हार गए, अभी क्या करें, तो प्रहलाद जी के पास आए। आप सोच सकते हैं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जिनके चार मुख हैं, सारी सृष्टि उन्होंने निर्माण की है, हाँ, वो एक 5 साल के निरागस बालक के पास जाकर विनती करते हैं, प्रहलाद जी भी आप भी जाके कुछ करो। उनके हाथ में माला दिया, एकदम हंसते हंसते भगवान के पास गए, कोई डर नहीं कुछ नहीं, भगवान को आके माला पहना दिया। अरे उनके सामने जाने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, सीधे भगवान की गोद में जाते और वह माला पहनाते। और जैसे ही प्रहलाद जी ने उनको फूलों की माला पहनाई, भगवान का क्रोध शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। और दूसरा कारण उसका था, प्रहलाद को देखते ही सारा वात्सल्य उनका ऊपर आया, क्रोध नष्ट हो गया और वात्सल्य का सागर प्रकट हो गया। तो गोद में लिया प्रहलाद को भगवान ने, और जैसे सिंह अपने बछड़े को, बछड़ा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, छावा कहते हैं मराठी में उसको, वो सिंह का बालक होता है ना, उसको सिंह, जो सिंह की पत्नी होती है वो चाटती है हमेशा प्रेम से, वैसे भगवान ने सिंह के अपनी जिह्वा से, जैसे वो तलवार की तरह जिह्वा थी उनकी, ऐसा वर्णन दिया है भागवत में कि उनकी तलवार, दो धारी तलवार होती है ना, वैसे उनकी जिह्वा जो है ना कांप रही थी उनके मुंह के अंदर, उसको देखना मुमकिन नहीं था, इतनी भयंकर जीभ थी। वही भीख जो सभी देवताओं को भयभीत कर रही थी, उसी जीभ से भगवान ने प्रहलाद को पूरा चाट लिया, इतना प्रेम से चाटा उन्होंने, सारा क्रोध शांत हो गया उनका। फिर प्रहलाद को भगवान ने कहा, प्रहलाद तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए, कितना अपराध सहन किया तुमने, कितना क्या कहते हैं शोक, भयंकर जैसे वो कहते ना, व्हाट इज कॉल्ड एट्रोसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं एट्रोसिटी को, हाँ, यातना, पीड़ा, कष्ट सहन किया तुमने मेरे लिए। तो वो कहते हैं भगवान मैंने कुछ कष्ट सहन किया ही नहीं, मैं तो केवल आपका नाम जपता रहा। कैसे? तो वो समझाते भगवान को कि देखो हाथी के पाँव के नीचे गए तो हाथी ने पाँव ही नहीं दिया, सांप ने काटा ही नहीं, विष का प्रयोग ही नहीं हुआ, शस्त्र चला ही नहीं, पहाड़ से फेंका तो तुमने अब मुझे झेल लिया, तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाली आपका नाम जपता रहा। तो भगवान और प्रभावित हो जाते हैं कि इतना कष्ट सहने के बाद भी ये बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप ही ने सब कुछ किया है। ये भक्त है, दिस इज डिवोटी। तो भगवान कहते हैं कि अभी वरदान मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद जी क्या बोलते हैं भगवान को? प्रहलाद जी बोलते हैं, भगवान मैं व्यापारी नहीं हूं। व्यापारी कैसे होता है? कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ काम करता है, कुछ काम करता है कि कुछ मिले उसको, कुछ हेतु से काम करता है वो, कुछ माल जमा करता है बेचता है तो कुछ पैसा मिलेगा इसलिए बेचता है, काम करता है। मतलब मैं व्यापारी नहीं हूं, मैंने किसी भी हेतु से ये कुछ भी नहीं किया है। फिर भी वो कहते हैं मांगना चाहिए। नहीं 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 मैं व्यापारी नहीं हूं, मांगना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा आपको लेना ही चाहिए, आप अगर लोगे तो आपको देने से मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे ये भाव मन में है कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया है, इतना सहन किया है। तो भगवान को फिर खुशी होनी चाहिए, इसलिए प्रहलाद ने सोच समझ कर विचार किया कि अगर मैं अभी नहीं मांगूंगा तो भगवान अप्रसन्न रहेंगे, अब मांगूंगा तो उनको खुशी मिलेगी, इसलिए उनको खुश करने के लिए उन्होंने मांगा कि अगर आपको देना ही कुछ है तो मेरे पिताजी जो है ना बहुत पापी है, पता नहीं कितने जन्मों तक नरक में जाएंगे, उनको आप मुक्त कर दो। तो भगवान ने बड़े उत्साह से कहा, अरे प्रहलाद तुम्हें पता नहीं है, तुम जैसा भक्त जिस परिवार में होता है उसके उसकी पूरी पीढ़ी में जितने लोग हैं, उसके पिछले 10 पीढ़ी में जितने लोग थे, उसके आने वाले 10 पीढ़ी में जितने लोग आएंगे, वो 21 पीढ़ी के लोग सब उनका उद्धार मैं कर चुका हूं, इसलिए आपको वरदान मांगने की जरूरत नहीं है, उसके पहले ही ये मैंने वरदान दे दिया है। एक भक्त होना चाहिए घर पे, एक भक्त होना चाहिए चांद की तरह। एक भक्त जब होता है घर पे तो वो शुद्ध भक्त जो है वो 21 पीढ़ियों के सब लोगों को तार देता है। माता पिता को छोड़ी दो, वो तो इंक्लूड है उसके अंदर, लेकिन पिछले 10 पीढ़ियों के लोग और आगे के 10 पीढ़ियों के लोग सब मुक्त कर देते हैं। और प्रहलाद जी एक बात कहते हैं, फिर स्तुति करते हैं भगवान की। प्रहलाद जी कहते हैं कि ये सब लोग आपसे भयभीत है लेकिन मुझे आपसे भय नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं एक वस्तु से डरता हूं, वैष्णवों के अपराध से मैं डरता हूं, इसलिए मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं कभी वैष्णवों का अपराध नहीं करूं। देखो साक्षात साक्षात भय के रूप में नरसिंह भगवान खड़े हैं, दुनिया डर रही है उनसे, वो कह रहे हैं मैं उससे डरता नहीं हूं, तो आप मेरे प्रिय भगवान हो, लेकिन संत लोगों का वैष्णव लोगों का अपराध करने से मैं डरता हूं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। बहुत सुंदर स्तुति किया है प्रहलाद ने। इस तरह से फिर भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान देकर भगवान जाने लगे, तो प्रहलाद जी बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए कि आप जा रहे हो, आपका दर्शन मिला आप जा रहे हो, मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो उस समय प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह भगवान ने अपनी एक मूर्ति दे दी बना के, तुरंत वहीं का वहीं प्रकट की अपनी मूर्ति और दे दी और कहा कि इस मूर्ति के रूप में मैं आपके साथ रहूंगा। वो मूर्ति कैसी थी? एक पैर ऐसा क्या कहते हैं उसको, मोड़ा हुआ है, उसी पैर पर दूसरा पैर रखा हुआ है, ऐसे आसन बनाकर हिरण्यकशिपु को पकड़ा है, और वो जो बताया ना आपको मैंने, दो हाथ से पकड़ा है, दो हाथ से काटा है, दो हाथ से माला पहना रहे, वो स्वरूप था उनका। छोटी सी मूर्ति उन्होंने हमको दे दी और फिर भगवान अंतर्धान हो गए और प्रहलाद महाराज फिर राजा बने। प्रहलाद जी ने कई हजारों वर्ष तक राज्य किया है राजा बनकर। तो ऐसा नहीं कि कथा यहाँ समाप्त हो जाती है, प्रहलाद तो बालक थे उस समय, तो फिर राजा बने वो। तो ये चरित्र जो सुनता है ध्यान पूर्वक, हाँ, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको अभय प्राप्त हो जाता है, भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस चरित्र कुछ क्यों सुनना चाहिए, इनको बार बार अनंत बार सुनना चाहिए, बार बार अनंत बार कहना भी चाहिए बिना थके, क्योंकि ये चरित्र श्रवण करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर हृदय में जो भक्ति आवश्यक है वो प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रहलाद जी का चरित्र श्रीमद् भागवत में आता है। श्रीमद् भागवत में बिना शुद्ध भक्त के किसी भी व्यक्ति का चरित्र नहीं आ सकता है और प्रहलाद जी का चरित्र उसमें सम्मिलित है। यहाँ तक कि बाकी सारे चरित्र कुछ कुछ अध्याय में समाप्त हो गए, प्रहलाद का चरित्र पूरा एक स्कंद में है, 7वां स्कंद 12 स्कंद में पूरा प्रहलाद जी के ऊपर है, विस्तार पूर्वक उनका वर्णन दिया है। इसमें एक बात बताना मैं भूल गया आपको बीच में, वो ये है कि जब उसको मारने का सब प्रयास खत्म हो गए, फिर बीच में भी एक बार बुलाया था उसको, वापस गुरुकुल भेजा। तो शंडमर्क ने क्या बताया, ठीक है अभी हम ना उसको अच्छी तरह सिखाएंगे, और इतना सारा वध का प्रयास करने के बाद में प्रहलाद जाकर अपने गुरु भाइयों को, मतलब अपने क्लास क्लासमेट्स को पढ़ाते हैं। कितनी हिम्मत रहेगी उसके अंदर, कितना निर्भय रहेगा वो, इतना भयंकर मारने का प्रयास करने के बाद भी दोबारा गुरुकुल जाने के बाद में अपने विद्यार्थियों को समझाता है वो सब कुछ, कैसे भगवान का भजन। और उसके गुरुकुल में सब लोग हरिनाम संकीर्तन करने लगते हैं, और शंड अमर के बाद में आकर खुद कंप्लेन करते हैं, महाराज अभी हम परेशान हो गए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी तो मैं जितना विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था वो सब विद्यार्थियों को उसने मन उसका खराब कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और सब इसके जरा पागल हो गए, सब लोग अभी राक्षस के बच्चे सब विष्णु का नाम लेकर नाच रहे हैं गुरुकुल गुरुकुल में, हम लोग रिजाइन कर रहे हैं, हमको काम ही खत्म हो गया हमारा, कुछ नहीं कर सकते हम। फिर उसके बाद में उसको बुलाया है खुद मारने के लिए। देखो कितना एक बालक कितना निर्भय हो सकता है बताओ, डर ही नहीं उसको पिताजी का, क्योंकि भगवान का पूरा आश्रय ले चुका है। तो आइए हम सब मिलकर इस प्रहलाद के चरित्र पर चिंतन करें। हाँ ये कथा केवल 3 से 4 सुनने के लिए नहीं है, हमेशा चिंतन करने के लिए। चिंतन करेंगे तो प्रहलाद जैसी मति हमारी हो सकती है प्रहलाद जी की कृपा से। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने हर रोज सुबह और शाम नरसिंह भगवान की आरती गाने के लिए नियम रखा है। मंदिरों में हो, भक्ति वेदांत में हो, कहीं भी हो, जहां पर भी मंदिर जैसा सेंटर है वहां भी सुबह शाम नरसिंह भगवान की आरती गाते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान भक्तों के संकट को निवारण करते हैं। अति संकट का समय आता है, नरसिंह भगवान का स्मरण करेंगे आपका संकट टल जाएगा। अनेक कहानियां हैं इस कौन के अंदर नरसिंह भगवान के द्वारा बचने की, तो हम भी इसलिए नरसिंह भगवान का सहारा लेते हैं। और नरसिंह भगवान का भी सहारा चाहिए तो प्रहलाद जी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद जी ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने नरसिंह भगवान का एक आदर्श रूप में शरणागति आश्रय ले लिया है। और प्रहलाद जी भी एक आचार्य हैं जिनके द्वारा संप्रदाय शुरू होता है, खाली कलयुग में नहीं है वो संप्रदाय, लेकिन प्रहलाद भी एक संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य, इतने महान व्यक्ति है प्रहलाद जी। बोलो प्रहलाद महाराज की, नरसिंह देव भगवान की जय हो।